शांति शांति। उपस्थित श्री आत्मन सुखतीर्थ निवासी भावेश व्यास रोज ही मिलते रहते हैं, और कल कहा कि स्वामी जी एक प्रश्न है, कल इतवार को आप उस पर कुछ प्रकाश फैलाए। सुन महल में दीना बार ले, आसन से मत जोड़ ले, कहत कबीर सुनो भाई साधो बाजत अनहद ना। अनहद नाथ की बात किया तो इसी पर थोड़ा सा बताए, अनहद नाथ जो है क्या है। बड़ी अच्छी बात है, साधना की बात है, लेकिन थोड़ी प्रक्रिया बताऊंगा। आपका जन्म कहीं भी हुआ, नर या नारी के रूप में, कर्म से अमीर घर या झोपड़ी में जन्मे, ये सब कोई कंडीशंस नहीं है, बात है आपकी साधना। हमारे पुराने संतों का जीवन देखें तो बड़ी उम्र वाले भी हैं, छोटी उम्र वाले भी हैं, 4 साल की अवस्था में शंकराचार्य जी को, 22-23 साल में संत ज्ञानेश्वर को, 2 विवेकानंद को भी देखें, स्वामी रामतीर्थ को देखें, तो बहुत छोटी उम्र में इनको जबरदस्त शक्तियां प्राप्त हुई, और बड़ी उम्र वाले भी थे। यहाँ पर एक प्रश्न आपसे मन में जो उठता है उसका समाधान करो। वेद भी कहता है और विज्ञान भी कहता है, हमारा आपका अस्तित्व था, है और है। वेद कहता है नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये वेद वाक्य। और विज्ञान भी कहता है अस्तित्व था, है और हमेशा रहेगा। आकार प्रकार में परिवर्तन है, अस्तित्व ही कम है। वेद जो कह रहा है, आज विज्ञान उसका समर्थन कर रहा है। एक उसका उदाहरण दूंगा आपके अस्तित्व, इसको समझिएगा। आज आप आए तो जब आप चले थे तो आपके मन में था कि आश्रम जाएंगे, मतलब मन में जो विचार था जाएंगे भविष्य का, तो आपके मन में एक विचार उठा कि आश्रम हम जाएंगे, आपने व्यवस्था की। यहाँ आए तो बड़े प्यार से मैं वेद और विज्ञान दोनों की बातें कर रहा हूं। आपकी उपस्थिति मेरे समक्ष हुई तो इस समय न भूत है न भविष्य है, हम वर्तमान में। तो जब आप चले थे तभी वर्तमान था, अभी कार्यक्रम खत्म होकर के आप चले जाएंगे बोलने में आएगा आश्रम गया था, लेकिन जहां है वहां वो वर्तमान, मैं भी हूं अपनी जगह और आप भी अपनी जगह है। अब दूसरा एक प्रश्न है, आपकी पवित्र कोठी पर मनीषानंद आए कि मनीषानंद के आश्रम में आप आए? वेद विज्ञान दोनों का था, अस्तित्व तो मेरा भी है, अस्तित्व तो आपका है। आकार प्रकार में कोई माता जी हैं, कोई पिताजी हैं, कोई गुरु जी हैं, कोई बेटा है, कोई बेटी है, लेकिन जो समझाना चाहता हूं उसे समझा। आपकी उपस्थिति से मेरा अस्तित्व नहीं बना, केवल एक दूसरे से मिले, और मेरे अस्तित्व से आपका अस्तित्व नहीं बना कि मनीषानंद से मिले इसलिए आप का अस्तित्व बना। अस्तित्व आपको मैं देखता हूं, आप मुझे देखते हैं, अस्तित्व दोनों का है, लेकिन वर्तमान में मिले, बातचीत करते, सत्संग करते, साधना करते, इसी तरह से कल की बात करो, आने वाले कल की बात करो, आप कल थे तो आज भी हैं, कल भी रहेंगे। शरीर की बात अलग, आप सो गए जिसे हमारे वेद ने सुषुप्ति कहा, तो सुषुप्ति में न वर्तमान है, आपको पता ही नहीं, जब वर्तमान ही नहीं है तो भूत भविष्य क्या होगा। जब आप सुषुप्ति में आ गए, मैं हूं वर्तमान में, तभी तो कहूंगा आइए हम सब मिलकर के सूरत चलेंगे, बाकी सूरत है या हम सूरत से आए, भरूच से आए, भरूच जाएंगे, लेकिन आप जहां है वो वर्तमान है। लेकिन जब आप सो गए, आश्रम में सो जाइए, भरूच में सो जाइए, सूरत में सो जाइए, अमेरिका में सो जाइए, मेरे बगल में मेरा शिष्य है, आपके बगल में आपका बेटा है, सर्वशांत माउंट पर भी जो लोग बाइबल पढ़े हैं, जिसे क्राइस्ट अपने शिष्यों कहते हैं, फादर एंड आई आर वन, मैं सो गया, मेरा बेटा सो गया, वी बिकम वन, हम हैं पिता, मेरे बगल में मेरा बेटा है, लेकिन एक ऐसी अवस्था है जहां पिता हूं, मेरा बेटा बगल में है, लेकिन पिता को पिता का ही ज्ञान नहीं है, तो बेटे का ज्ञान क्या होगा, ये भी नहीं ज्ञान है कि मैं पिता हूं, एक ज्ञान कैसे होगा कि बगल में बेटा है। आप जागृत में कह सकते हैं, कल ये घटना हुई, भूत की बात कर सकते हैं, या कल मैं स्वामी जी बंबई जाऊंगा, आप कर सकते हैं, कल मैं बंबई से आया और आज बंबई जाऊंगा, लेकिन जब आप सो गए तो कौन बंबई से आया, कौन बंबई जाएगा, बीत रात, वेद कहता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाः, बिल्कुल वैज्ञानिक विषय की बात कर रहे हैं। आप हैं लेकिन नींद में यू गो बियॉन्ड माइंड एंड बॉडी कॉन्शियसनेस, हमारी बात को अंग्रेजी में बोल रहे हैं, आप हैं जो हमारे वेद ने कहा दिया, सुषुप्ति में सब कुछ है, आपका माइंड नहीं खत्म हुआ, आपका विचार नहीं खत्म हुआ, बल्कि आप इसके ऊपर उठ गए, वीत राग का अंग्रेजी अनुवाद है बियॉन्ड, वीत राग का ही बियॉन्ड, यू डोंट किल द माइंड, यू गो बियॉन्ड, आप माइंड के ऊपर चले जाते हैं, वीत राग, राग विचार के ऊपर उठ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए यहां पर कोई चीज खत्म करने की कोशिश ना करो, डोंट ट्राई टू किल एनीथिंग, यू कैन गो बियॉन्ड। अगर आप में क्रोध है तो क्रोध में खत्म कर सकते, जो है उसके ऊपर, जब आप प्रगाढ़ निद्रा में है तो क्रोध आता है, आप उसके ऊपर उठ गए, बड़े प्यार से कहता हूं, तनाव में आप भांग पी लेते हैं, आप तनाव मतलब माइंड से ऊपर चले गए कुछ क्षणों के लिए, इसलिए भांग पी लिया, शराब पी लिया, कोई देर के बाद वापस आ गए, फिर वही परेशानी। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कई बार हमारी साधना पशु की तरह होती है। पशु गंगा में नहाएगा और फिर बाहर आकर कीचड़ में बैठ जाए। हम आप मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, साधना में बीतड़ाकी बन जाते हैं, पवित्र विचारों में स्नान करते हैं, लेकिन पशु की तरह वहां से निकल कर फिर कीचड़ में, मेरे तेरे में, माया में फंस जाते हैं। इसलिए फिर परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती। इस माया की कोई परेशानी नहीं है, जगत में हर चीज विज्ञान का साथ सापेक्ष है। सापेक्ष का से जानते हो न इसमें सुख है न दुख है, ये आपके अनुकूलता प्रतिकूलता है। पंखा वही है, विज्ञान की दृष्टि से सापेक्ष बात है। ठंडी में अगर हम पंखा चलाएंगे तो पंखा तो वही है, लेकिन पंखे की हवा मेरे अनुकूल नहीं। गर्मी में चलाएंगे अनुकूल है, पंखा तो वही है। सापेक्षवाद का क्या अर्थ है? जगत जो मिथ्या कहा गया इसको वैज्ञानिकों ने सापेक्ष रहा। मिथ्या का अर्थ है ये चीज दिखाई पड़ती है लेकिन पोषक या दाहक बनाना ये आपके हाथ में, उसके हाथ में नहीं। क्योंकि विज्ञान भी कहता है जो चीज है ही नहीं उसका प्रश्न ही नहीं उठता है, तभी आप प्रश्न उठा रहे। लेकिन वो चीज पोषक भी बन सकती है, दाहक भी बन सकती है। मेरे हाथ में आ गए, लकड़ी जला करके मैं भोजन भी बना सकता हूं, ये पोषक हुई आग, और घर भी जला सकता, ये दाहक हुई। मैं इस वाक से, पेटी से मैं आरती के दीपक भी जला सकता हूं और मंदिर भी जला सकता। इसलिए सापेक्षवाद का उपयोग आप करता है, वो दाहक भी है पोषक भी है। बुद्धि से काम लोगे तो सुख मिलेगा, विवेक हटा दोगे आप लालच में आ गए, ठीक से सुन नहीं पाए, मर्यादा के बाहर गए तो उचित दाग बन जाएगी, दुखी करेगी, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे करोड़पति हो, सन्यासी हो, महामंडलेश्वर हो, भी शंकराचार्य हो। शक्ति प्राप्त कर जिन लोगों ने मर्यादा का उल्लंघन किया वो शक्ति अगर इज्जत दिलाई है तो मर्यादा के बाहर जाने पर उस व्यक्ति का सत्यानाश हुआ चाहे कोई भी। इसलिए सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे और आपके अंदर इंट्यूशन के साथ इंटेलेक्ट भी है। हमारा संस्कार क्या है, हमारा धर्म क्या है? तो कबीर साहब का शब्द जो कल बताया गया मुझे भावेश व्यास के द्वारा, मैंने कहा ठीक है सबको सुनाऊंगा, बड़ी अच्छी बात है, अच्छे अच्छे लोग जो आए हैं सुने। 80% ये मनोविज्ञान कहता है। हम भविष्य में हैं और भविष्य नाम की कोई चीज ही नहीं है, वर्तमान है। और जब वर्तमान भी नहीं रहता तो विस्फोट होता है। अब इसी बात को जो अच्छी तरह समझाओ भाई, टेक्निकल आप नाम जानते कि नहीं जानते छोड़िए, मैं मीरा की बात करूं, कबीर की बात करूंगा, बुद्ध की करूंगा, पीर के, पैगंबर के, टेक्निकल बात नहीं उठाऊंगा। यम क्या है, नियम क्या है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समय, ये सब कुछ रहना, इसकी जरूरत भी नहीं। अन्नमय कोष प्राणमय मनोमय विज्ञानमय सब कुछ उठा लिया। ये कभी नहीं जानते थे क्या मीरा नहीं जानते, एक सरल रास्ता में आते हैं। और विज्ञान भी कहता है, बड़े प्यार से कहता हूं, मैं पढ़ाई लिखाई खिलाफ नहीं, लेकिन टैगोर ने एक बड़ी सुंदर बात कही और विज्ञान भी यही बात कहा, अगर किसी साधना में सफल होना है तो कबीर ने जो कहा शून्य महल में थे, पहले शून्य बन जाओ, यही टैगोर ने भी कहा। कुछ सीखना है तो शून्य मतलब बालक, शून्य मतलब मूर्ख नहीं, जीरो नहीं, बेकार नहीं, बालक शून्य। जब आप जन्मे थे हिंदू थे, जब आप जन्मे थे मुसलमान थे, जब आप जन्मे थे ईसाई थे, संस्कार जिसे विज्ञान कहता है सेकंड नेचर, हम हिंदू हैं कि मुसलमान है कि ईसाई, सेकंड नेचर पर्यावरण से हिंदू मुस्लिम ईसाई है, जन्म से न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, बालक बालक बालक। तो साधना में पहले आप बालक बने, बालक जन्म, बालक में कोई भेद नहीं, कोई जाति पाति चक्कर नहीं है, कोई सेकंड नेचर का संघर्ष नहीं है कि मैं बड़ा तू छोटा, हमारी शक्तियां किधर जा रही, पूरा ब्रह्मांड हमारे आपके अंदर है। लेकिन बालक जैसे सहज हो जाओ, सरल, बालक का क्या स्वभाव है, सहज और सरलता, सहज और सरलता का संकेत क्या है, सभी अच्छे हैं, जो जैसा कर्म करेगा फल पाएगा। लेकिन दूसरे की निंदा करने वाले आप होते कौन, सबकी रचना करने वाला एक परमात्मा है, परमात्मा अगर मेरा पिता है तो आपका भी, तो आपकी निंदा करके मैं अपने बाप की निंदा कर रहा हूं, अपने पर वज्र कर रहा हूं, खंडन कर रहा हूं। ठीक है कर्म से होंगे कोई, लेकिन किसी पर आक्षेप लगाना कलंक लगाना ये आपका धर्म नहीं। सावधान रहिए, बचिए, जरूरत पड़ेगी रावण को मारेंगे, जरूरत पड़ेगी कंस को मारेंगे, लेकिन राम की सरलता, किसकी सरलता की पहले बात कर रहा हूं, साधना की। मेरी साधना से आप कमजोर होने वाले नहीं है, अगर हिंदू है तो असली हिंदू बन जाओ, मुसलमान हो तो असली मुसलमान बन जाओ, ईसाई हो तो असली ईसाई धर्म का पालन करो। लड़ाइयां नकली लोगों में, असली लोगों में नहीं। मुसलमान कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, हम कहते सर्वधर्म कल ब्रह्म, वो कहता सब में अल्लाह है, मैं कहता सब में ब्रह्म है, क्या शब्दों के चक्कर पड़ो, बात तो वही की वही है। अगर आप असली हिंदू बन जाओ तो किसी से नहीं लड़ो, लड़ना है तो अपने आप से, अपने अहंकार से, अपने मदमत्सर से, अपनी कमजोरी से। लेकिन हम अपनी कमजोरी से लड़ करके दूसरे को कमजोर बता कर लड़ रहे और फायदा कुछ नहीं हो रहा। इसलिए हमारा वेद कहता है पहले अपने आप को मित्र बनो, अपने आप अपने मित्र बनो, स्वयं को अच्छी सलाह दो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। हमारे कृष्ण ने, भगवान ने अर्जुन को सलाह दी, लेकिन जरूरत पड़ी तो कहा मामा से भी लड़ो, गुरु से भी लड़ो, पितामह से लड़ो, क्योंकि अपने धर्म पे नहीं, अपनी मर्यादा में नहीं है। ऐसी संस्कृति कहीं है जहाँ कहा जाता है मामा की पूजा करो, गुरु की पूजा करो, पितामह का आदर करो, इसी संस्कृति में कहा गया अगर गलत लोगों की मदद करें तो इनको उठा के फेंक। लेकिन इस समय जो आपको बताना चाहता, आपको कमजोर नहीं बनाना चाहता, हमें अपनी बुराइयों से लड़ना, हमें अपने आप को जीतना, दूसरों को जीत कर क्या करो। राम के समय में राम के हाथ से रावण मरा, क्या रावण खत्म हो गए? कृष्ण के हाथ से कंस मरा, पांडव के हाथ से कौरव मरे, दुष्ट लोग मरे, क्या दुष्टता खत्म हो गई? ये थी है और है, इसलिए हमें अपनी बुराइयों से लड़ना है। साधना में दूसरों से नहीं लड़ना, और लड़ाई का मतलब है जीतना, और जीतने का मतलब है हम इनके ऊपर चले जाए। एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा इसी बात को लेकर, एक पागल मेरे पीछे पड़ गया, मैं इतना तेज दौड़ा कि पागल की निगाह से मैं ओझल हो गया और मैं बड़ी शांति में। एक शायद ने लिखा इसी बात को, ये दुनिया पागल है, इससे मत लड़ो, मन से इतना तेज चलो कि दुनिया पीछे रह जाए, आप आगे चले जाओ, आप परम शांति में, आप समाधि में आ जाओ, दुनिया अपनी जगह ठीक है। ये आप कीजिए, आप तो दुनिया खत्म करना चाहते हैं, राम नहीं खत्म कर सके, कृष्ण नहीं खत्म कर सके, गांधी नहीं कर सके, बुद्ध नहीं, महावीर नहीं, तो आप क्या कर पाओगे? एक क्लास वन ऑफिसर मेरे साथ कहता है, स्वामी जितने अच्छे अच्छे संत है बुराई क्यों नहीं खत्म करते? मैंने कहा मैं बुराई खत्म कर दूंगा तो पहले तो आपकी नौकरी जाएगी। वो डीएसपी थे, आप साधुओं का डीएसपी बने हो कि क्राइम पर बने? चुप हो, ये तो चलता रहा, लेकिन आप अपना फर्ज निभा। एक और आगे मेरे से कहते, स्वामी जी साधु लोग चाहें तो बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मैंने कहा आप साधुओं को पसंद करते हो तो आईएएस कलेक्टर को बने, साधु को नहीं बने, साधु बन जाओ। आप कहते हो साधुओं को उपदेश देने के लिए आप कलेक्टर बन गए, लेकिन साधुओं का अच्छा मानते हो तो आप क्यों नहीं बने? जो उपदेश देना सरल है उसी उपदेश का पालन करना बहुत बहुत कठिन। आप बताओ, लेकिन मायावाद कहता है कोई भी समय रहा, वही जो आपसे कहा राम का समय तो राक्षस कहलाए, कृष्ण का समय आतताई कहलाए, आज आतंकवादी हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, लुटे रहे तो रहेंगे, नाम बदलता गया क्या? इसलिए हमें अपनी बात देखनी है, ये गुंडे कब खत्म होंगे, आतंकवाद कब खत्म होगा, फलाना कब होगा, ये राम नहीं कर सके, कृष्ण नहीं कर सके, बुद्ध नहीं, महावीर नहीं, जीसस क्राइस्ट नहीं, पीर नहीं, पैगम्बर नहीं, तो मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकते। आई एम ऑल्सो गवर्न बाय द सुप्रीम पावर। है कोई सुप्रीम पावर? है कोई डायरेक्टर कि फिल्म में हीरो भी बनाया विलन भी बनाया, दोनों को डायरेक्ट करने वाला एक ही है। इसलिए ये सब चिंता छोड़िए कि दुनिया कब सुधरेगी, क्या होगा, कैसे होगा, अपने को सुधारो, और अपने को सुधारने के लिए ही ऐसा सक। दुनिया तो कुत्ते की टेढ़ी पूछ है, जब तक पकड़ोगे ठीक है। मैं किसी महान व्यक्ति की निंदा नहीं करता, लेकिन एक बार भोजन समय पूछा गोरज में, हम दोनों साथ ही साथ थे, मैंने कहा प्रभु जी आपके प्रवचन में लाखों लोग आते हैं और अब तक इतनी कथाएं हो चुकी, कितने लोग सुधरे? ये प्राइवेट कहते मनीषानंद जी एक प्रवचन में एक भी सुधर जाता तो आज भी इतने लोग इकट्ठे नहीं होते जो देख रहे हैं। लेकिन हमारा फर्ज है, मैंने कहा मैं करूंगा, जब तक हूं तब तक कथा करता रहूंगा। बड़ी सुंदर बात है, यही मैं आपसे कहता हूं। किसी को सुधारने की कोशिश न करो, हम स्वयं सुधारने की कोशिश करें। गांधी जी की बात याद आती, गांधी जी से किसी ने कहा तो मुझे बहुत अच्छी बात, मैं जो लिखता हूँ लिख करके स्वयं देखता हूँ क्या मैं इसके लायक हूँ कि नहीं, पहले मैं अपने को देखता हूँ, जो बोलता हूँ पहले देखता हूँ क्या मैं इसके लायक हूँ कि नहीं, मुझे अधिकार है कि नहीं। जब तक मैं ठीक से ब्रह्मचारी नहीं बना कभी ब्रह्मचर्य पर नहीं बोला। जब मेरे में सुधार आया तब मैं उसका अधिकारी बना। हम कह रहे हैं कि आप शांति में रहो, अब मैं चिल्ला रहा हूं, आई एम शाउटिंग, आई एम टेलिंग यू प्लीज आज द पेशेंट बी क्वाइट, और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। इसके बजाय मैं चुप हो जाऊं आप भी चुप हो जाओ। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर साधना करनी है तो माया के प्रपंच में न पड़ो, माया की है और रहे। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, होता रहा है, होता रहा, ये तर्क की बात नहीं है, ये आपके तर्क से कुछ होने वाला नहीं, ये कर्म का सिद्धांत। लेकिन मैं आपकी बात करता हूं, हमें किसी की निंदा नहीं करनी, हमें किसी को बुरा नहीं, अच्छे बुरे दोनों के ऊपर जाना है। बड़ी ऊंची बात बता रहा हूं, वो सरल ढंग से बता रहा हूं। एक आदमी राम राम बोल रहा है बड़े प्यार से कर, एक आदमी राम राम बोल रहा है लेकिन साधना के आधार पे कह रहा हूं, राम राम बोलने वाला भी सोचे कि राम का नाम मैं न भूल सकूं, नींद में भी राम का नाम मुझे लेना है तो नींद नहीं आई। एक आदमी रावण का नाम ले रहा और वह सोचता रावण न भूले। अब आ गई साधना, अगर आपको सुसुप्ति में जाना है, अच्छी नींद में जाना है, तो राम को छोड़ना नहीं है, राम के नाम से ऊपर जाना है। रावण को छोड़ना नहीं है, रावण के नाम से ऊपर जाना है। जब आप राम रावण के ऊपर हो गए तो आप अपने में आ गए, वर्तमान में आए, और वहाँ वर्तमान भी खत्म हो गया, न आप हैं, जब आप ही नहीं हैं तो वहाँ न राम है न रावण है, न कोई अच्छा है न कोई बुरा है। अच्छे बुरे की पहचान तो बाद में हुई, इसलिए शुभ अशुभ दोनों का त्याग करना। और शुभ अशुभ जब दोनों का त्याग करते हैं, अब उसकी विधि बताता हूं। पहले चलते फिरते हमें अशुभ से शुभ में आना है, हमारे अंदर 90% अशुभ विचार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अंधकार है, इसको गिराने की भावना है, लेने की भावना है, मन में चोर बैठा है, बदमाश बैठा है, मन से चैतहीनता भी है, बहुत कुछ है। कई बार समाज के डर के मारे लोग चैतवान है लेकिन प्राइवेटली मैंने देखा इसमें चैतवान नहीं है, सबके मन में चोर बैठा है, मैंने देखा इसलिए करता, लेकिन समाज के, समाज मुझे क्या कहेगा, समाज के डर के मारे वो सज्जन है। तो सज्जन और साधुता में अंतर है, मैं आपको सज्जन बनाना नहीं चाहता, मैं कहता साधु हो जाओ। सज्जन का क्या अर्थ, समाज को देख करके अच्छा व्यवहार करना। साधुता क्या अर्थ है, कोई देखे कि न देखे लेकिन मन में गलत विचार ही नहीं आना। और अगर सज्जनता को ओढ़ोगे तो कभी न कभी ओढ़ी हुई चीज हटेगी और पता चलेगा, और कौभान जैसे पेपरों में आ रहा है वो आपका हो कि मेरा हो एक दिन आएगा। ये कुदरत किसी को बख्शेगी नहीं, चाहे कोई भी, कब तक छिपाओगे, हमसे छिपाओगे, कुदरत से छिपाओगे। मैं रोज डोंगरी छिप के खाता हूं, कब तक छिपाऊंगे। प्रकृति आज तक चाहे रावण था, हिरण्यकश्यप था कि कंस था, तो अगर हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे तो कब तक हम छिपा के रखें। इसलिए जीवन में छिपाने की बात करते हैं। गलत चीज गलत ही है, तो शुभ अशुभ दोनों का त्याग करना। कोई हमारी निंदा करे वो अपना परिचय देना, इससे उसे लड़ने कोई जरूरत नहीं। कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है वो अपना परिचय देना। भगवान कृष्ण ने कहा गांव में जाओ, हे अर्जुन एक बुरा आदमी ढूंढ कर लाओ। दुर्योधन को कहा कि एक अच्छा आदमी लाओ। थोड़ी देर के बाद युधिष्ठिर भी आए और दुर्योधन भी आए। युधिष्ठिर कहता है गांव में कोई बुरा नहीं, और दुर्योधन कहता है गांव में कोई अच्छा नहीं। विज्ञान इसे कहता है सेल्फ प्रोजेक्शन। आप अच्छे हैं तो सब आपको अच्छे दिखाई पड़ते, अपने को अच्छा बना लो। और मनोविज्ञान कहता है पूरे शहर को लाल नहीं कर सकते लेकिन लाल चश्मा लगा, पूरी सड़कों पर गादला आप नहीं बिछा सकते लेकिन जूते पहन, मतलब अपने को ठीक कर लो। दुर्योधन गलत बात थे सब में गलत देखा, युधिष्ठिर ठीक थे सब में अच्छा ही देखा। यही बात विज्ञान समझ गया, सेल्फ प्रोजेक्शन एडजस्ट से अपने को ठीक कर। पूरे शहर को लाल देखना है तो आंख पर लाल चश्मा लगा। पूरी सड़क पर आप गादला नहीं बिछा सकते लेकिन जूते पहन लो, मतलब अपने को ठीक कर लिया। गर्मी क्या करेगी, बरसात हो रही है अम्ब्रेला एक छतरी ले लिया, अपने हाथ में छतरी ले लो। पूरी धरती पर आप छतरी नहीं डाल सकते, अपने हाथ में छतरी ले लो, बच गए। यही बात मैं आप उठा, दुनिया में ठंड भी रहेगी बरसात भी रहेगी गर्मी भी रहेगी अच्छे भी रहेंगे बुरे, लेकिन आपको क्या होना है, राम की तरफ जाना है कि रावण की तरफ, किसकी तरफ कि कंस की तरफ, किधर जाना है? आप स्वतंत्र का चुनाव। फिर सब में अच्छाई देखो, आपके अंदर जो एनिमल पैशन है इसको बदलने के लिए माइंड को कहीं अच्छे मंत्र और चित्र में चरित्र में मन लगाना पड़ेगा। हम राम की बात क्यों करते, विज्ञान है। आप आम आम भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं राम के, लेकिन देखिए विज्ञान, राम बोलते ही राम का चित्र आएगा, चित्र साथ चरित्र आएगा। उसी राशि में रावण है लेकिन रावण बोलते समय चित्र और चरित्र आएगा जो आपका हनन करेगा। तो विज्ञान कहता है कि आप आम भी बोल सकते हैं लेकिन आम खाते ही राम का एक आकार आएगा। बोलने को आप गधा बोल सकते हैं लेकिन गधे का भी एक आकार आएगा। तो जिसका चरित्र और आकार, मतलब जिसके चरित्र से आकार में रूप में सगुण भक्ति में श्रद्धा उपजे उसका नाम, ये आप पर। आपकी श्रद्धा राम में है कि कृष्ण में है कि गुरु में है कि शंकर में है कि पीर में है कि फकीर में है कि नदी में है किस में है। कितने लोग मेरे पास आते हैं, महाराज जी मेरा मन नहीं लगता। मैंने कहा बता मन कहाँ लगता, हाथ जोड़ के कहता, कहते बेटे में लगता। मैंने कहा ठीक, बेटे को कृष्ण मान ले, मन कहाँ लगता है। स्वामी जी पैसे में, पैसा लक्ष्मी मान लो, माँ मान लो, मैं हटाता नहीं उसके विचार को बदलता हूँ। तुम्हारा मन जहाँ लगता है केवल विचार बदलो, पैसे में लगता है लक्ष्मी मानो, विष्णु की पत्नी है मेरी माँ है, पैसा मत सोचो, माँ को याद करो, पैसा याद आए माँ याद करो, माँ लक्ष्मी माँ। पुत्र याद आए तो कृष्ण का नाम लेके पुत्र को याद करो। स्वामी ठीक है, क्योंकि विज्ञान और वेद दोनों सिद्ध कर दिए कि आपका विचार आपकी शक्ति है। और यही बात रामायण में बताई गई, रावण के सैनिक मुक्त हो गए लेकिन राम के नहीं, व्यवस्था करनी पड़ी। तो राम से पूछा गया ये क्या कारण है, तो राम कहते हैं मेरे सैनिकों में रावण का विचार था, इसलिए मन में रावण आ गया तो रावण कैसे मुक्त होगा। और रावण के सैनिकों के मन में राम आया, राम का विचार करके राम बैठ गए, तो राम जहां बैठेंगे वहां मुक्ति हो जाए। इसलिए रावण के सैनिक मुक्त हो गए और राम के सैनिक मुक्त है। इसलिए विज्ञान भी कहता है जो आपका विचार है वही आपकी उपस्थिति है। तो हटाने कोशिश ना करो, बल्कि सब में परमात्मा देखो, सुख देखो। तो हमारे अंदर जो एनिमल पैशन है, पशुता है, उसको मारने कोशिश मत करो। जहां मन जाए वो परमात्मा, राम मानते हो तो राम है, कृष्ण है कृष्ण मानते हो, शिव शिव, पीर पीर, फकीर जो भी, वाहेगुरु जो भी मानते हो, बदलो मत। आप लोग विज्ञान जानते हैं कि नहीं जानते? थोड़ा बहुत मेडिकल के ज्ञान मुझे भी है, बुरा न मानिएगा। किसी व्यवस्था से, मेडिकल साइंस है, आप किसी भी डॉक्टर से पूछो, किसी भी व्यवस्था से हमें प्रथम 6 महीने तक किसी भी कारण अगर मां का दूध नहीं पी सकता, या तो गाय का पिलाओ या भैंस के पिलाओ, दोनों ना पिलाओ। अब इसीलिए देखिए, अब विज्ञान मान गया। एक कहानी आपको सुनाता हूं, पहले विज्ञान नहीं मानता था, केवल कहानी बताऊंगे, इसमें जाति पाति के चक्कर नहीं है, वो मैं लाना भी नहीं चाहता, लेकिन कहानी बिल्कुल विज्ञान पर है, मैं अपने ऊपर लेता हूं। कहानी तो 400 वर्ष पुरानी है, मैं क्यों किसी की जाति पाति का चक्कर डालू, मैं मानता ही नहीं तो चक्कर, बात बताना चाहता। मैं 3 महीने का हूं, मेरी मां की सहेली आई, उसके भी बच्चा था, और मुझे उठाकर अपना दूध पिलाने लगी, मेरी मां ने छीन लिया। तूने मेरे बेटे को दूध पिलाया? कहा दूध ही पिलाया। कहा पिलाया, लेकिन मेरे और तेरे विचार में अंतर है, इसलिए जिंदगी में एक बार इसके सामने जबरदस्त हार आएगी। वो सब कहानी मैं उठाना नहीं चाहता, लेकिन आज विज्ञान भी मान रहा है। मेरी प्यारी पुत्रियों, 6 महीने तक हमारा बेटा अपनी माँ का ही दूध पिए और बाहर का दूध पिए, तो एक ही गाय, वही गाय होनी चाहिए, वही बैल, अगर बदलोगे तो राक्षस हो जाएगी। ये विज्ञान का, अब मान गया कि माँ के दूध से बढ़िया दूध, और माँ को कोई तकलीफ है तो एक ही गाय रखिए, उसी गाय का दूध, गाय भी बार बार, क्योंकि ये पहली बेस की है, दूसरी है उसके दूध में भी अंतर, और भैंस के दूध में बहुत। आज विज्ञान मानता है, क्या भारत करो, भले कहानी है, और कहानी वही हुई, युद्ध में एक बार हारा वापस आया, तो माँ कहती मैं पहले ही जानती थी, अभी ये फिर जाएगा, भी जीत आएगा, क्योंकि एक बार जो दूध पिया था उसका असर है। वो मैं जाति पाति के चक्कर नहीं उठाना चाहता, लेकिन एक बात बता रहा, लेकिन आज विज्ञान मान गया। अब आज की बात बता दो, अगर चाहते हो कि आपकी 50 लाख की गाड़ी ठीक से चले, तो एक ही पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल लेना, बदलोगे तो बहुत जल्दी खराब हो गया। हाँ हाँ, वो जो दूध वाली बात है, वो आपके इंजन की भी बात, एक बात बताता। तो इस तरह से वैद्य ही कहता है ये करो वो करो, लेकिन हमारे अंदर जो पशुता है उसको निकालने के लिए हमें ऐसे चित्र पर ध्यान देना पड़ेगा जिसका नाम लेते ही चरित्र भी अच्छा हो। रावण बहुत सुंदर है ऐसा नहीं, लेकिन चरित्र ठीक नहीं। अगर रामायण के आधार पर कहूं तो बुरा न मानिएगा, सीता से ज्यादा सुंदर मंदोदरी थी। आप पढ़िए, मैं एक प्रसंग बताता हूं। माँ कहती है लंकेश रावण, रावण तो अभी नाम पड़ा, उस समय लंकेश दशानन, कि लंकेश मंदोदरी जैसी सुंदर दुनिया में कोई नहीं है, फिर ऐसा क्या सुन रही हूं। वहां पर जो बड़ी मनोवैज्ञानिक बात रावण से कहलाई गई है कि डाली गई, मेरे में उपासना नहीं है, मेरे में वासना है, और वासना को एक बार चीज मिल जाती है तो उससे उसका मन हट जाता है। अब समझ जाए, इसलिए मंदोदरी बहुत सुंदर है लेकिन चूंकि मेरी हो चुकी है इसलिए उसमें कोई रुचि, और दूसरी जो अभी तक नहीं बनी उसमें रुचि है। मेरे सामने कितने केस ऐसे आए, बड़े बड़े हाई ऑफिसर्स की पत्नियों ने मुझे अपने पति की बात बताई, मैं तो गुरु हूं, पति को बुलाया, भाई कुछ ऐसा सुना, अपने ढंग से बात किया, तो वे कहते हैं महाराज जी आपकी बेटी मतलब आपकी पत्नी उनकी मतलब बेटी कि मेरी पत्नी स्वामी जी बहुत अच्छी बड़ी सुंदर है लेकिन शुरू से अलग अलग चटनी खाने की आदत पड़ गई है, फिर क्या करूं कैसे सुधरूं, चटनी बोलते चटनी, ये तो घर में बोल रहा वही बात रावण वाली, सब कुछ है घर में लेकिन मनोविज्ञान का था अगर संयम नहीं होगा तो प्राप्ति के बाद अरुचि, इसलिए आदमी जो है होता है, बाकी इतने गलत नहीं होते, इसलिए शुरू से ही संयम की बात बताइए। यहाँ पर गांधी जी स्वयं लिखे हैं कि प्रबल प्रतिज्ञा करने के बाद भी मैं 6 महीने में सुधरा, वो आप उनकी जो जीवन गाथा उसमें उन्होंने भी कहा कि 40 साल की उम्र में ब्रह्मचारी बना, रोज प्रतिज्ञा करता रहा तो 6 महीने के बाद सुधरा। लोगों ने पूछा कि आपके लड़के 4 ऐसे है, कहा कि जब मेरे मन में कीचड़ था तभी तो पैदा हुए, कीचड़ क्या सुधरे, मुझे सुधारने में 6 महीने लगे, ये क्या सुधरे, या विचार कर। इसलिए जो कहा जाता है हाथ में माला लो, कोई अच्छा नाम लो, विज्ञान भी कहता हाथ में माला लोगे तो विचार अच्छे बने, हाथ में तलवार लोगे तो विचार में हिंसा आएगी। इसलिए आज विज्ञान भी कहता है शुरू की चीज है, प्राइमरी चीज है, पाठ करो, जहां श्रद्धा उसका नाम लो, चलते फिरते उठते बैठते हाथ में माला लो तो इस, क्या होगा इससे, एक घर्षण होगा, फ्रिक्शन, तो मूलाधार में जो आपकी शक्ति है फिर विज्ञान आ गया, तो उसमें जब गर्मी आएगी तो गर्मी से वो जो शक्ति है उसको एक हवा मार लो, हवा में जब गर्मी आती है तो स्वयं अपने आप उठती है, उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी। 3.5 अंगुल की कुंडल में, कुंडल मतलब जैसे खड़ा होता, उसमें कुंडली शक्ति, वही शक्ति उसको सर्पणी बोलते हैं, 3.5 अंगुल की लिपट करके मुंह नीचे करके बैठी है। आपने कभी सांप को सोते हुए देखा, वो कुंडल बना के मुंह नीचे कर लेता है, अगर कभी देखा है, मैं तो बहुत देखा हूं, यहां भी देखता हूं यहां भी, लेकिन जब ठंडी में ताप धीरे निकलता है वो ताप से फिर उसका मुंह ऊपर आता है, इसलिए सर्पिणी कहा गया, कुंडली शक्ति कहा गया, कुंडल बना के मुंह नीचे कर लेती। और आप राम बोलो, कृष्ण बोलो, वाहेगुरु बोलो, पीर बोलो, फकीर हो, आपकी श्रद्धा जिसका चित्र और चरित्र दोनों अच्छे, तो उसमें गर्मी पैदा होगी, और उसमें जब गर्मी पैदा होगी मुंह ऊपर की तरफ आएगा, फिर क्रम से स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत तक आएंगे। बड़ी टेक्निकल बात है, 4 होगा 6 होगा 8 होगा सब नहीं उठाता आम बात, लेकिन मूल बात है कि आपके अंदर स्पंदन होगा, आप हिलेंगे, कई बार अरुचि पैदा हो जाएगी, कई बार आपके व्यवहार पागलों जैसा होगा, कई बार बोलोगे बोलते रहोगे, खाओगे खाते रहोगे, लेकिन आप आदमी नहीं समझ पाते, ये जगत के व्यवहार से थोड़ा विचित्र व्यवहार हो जाएगा, और इसको अच्छी तरह से पढ़ना है तो संत ज्ञानेश्वर की जो ज्ञानेश्वरी टीका है गीता पर, ज्ञानेश्वर महाराज जबरदस्त ज्ञानेश्वरी गीता में छठे अध्याय में, ज्ञानेश्वरी गीता छठे अध्याय में इसका वर्णन किया, तो उसे घर में रखिए, पढ़िए, शरीर सूख जाएगा, पागल जैसे हो जाओ और वहीं घबरा जाते हो। अगर गुरु नहीं प्रबल है या गुरु से दूर हो तो व्यवस्था बिगड़ जाती है, लोग आपको पागल कहेंगे, कोई कहेगा भूत पकड़े हैं, कोई कहेगा प्रेत पकड़े हैं, कोई कहेगा फलाना है, कोई कुछ करेगा। भूत प्रेत होते हैं ऐसा नहीं, लेकिन ये मैं साधना वाली बात कर रहा हूँ। मैं आसाम गया, जोरहट गया, सब अस्तित्व है। विज्ञान की एक बात पकड़िए, जिसका नाम है उसका अस्तित्व है बस। लेकिन आज आदमी ही भूत बन गया तो भूत ढूंढने की जरूरत क्या, क्या जरूरत, बिना जरूरत दूसरे को सताना, गलत बोलना, परेशान करना, उसको भूत ढूंढने की क्या जरूरत बताओ। तो ये सब क्रियाएं हों और इसमें प्रबल गुरु के सानिध्य में, गुरु भले प्रबल हो सानिध्य चाहिए, नहीं तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इतना बता दो, उसकी एक ही पहचान है ठीक होने की, क्योंकि आपने अनहद कि जो बात की है उसके पहले की जो प्रक्रिया है बहुत, रामकृष्ण परमहंस को उदाहरण दूंगा आप समझ जाएंगे। जैसे 2 साल का बच्चा किसी की गोद में बैठे, सुंदर से सुंदर नारी की गोद में बैठे, उम्र कम है कि ज्यादा, जैसे छोटा बच्चा सुंदर नारी की गोद में बैठता है, ना नारी की व्यवस्था बिगड़ती है, वासना के बाद ना नारी की व्यवस्था बिगड़ती है, ना बच्चे की व्यवस्था बिगड़ती है। इसलिए सबसे बड़ी पहचान यह है, न डिग्री, न डिप्लोमा, न कपड़ा, न उम्र, कुछ भी नहीं, वो पढ़ा लिखा के अनपढ़ है। साधुता की, अच्छी साधुता की पहचान यह है, सुंदर से सुंदर नारी का संपर्क होने पर भी संभव है कि मुझे वासना ना आए, लेकिन मेरे द्वारा उसको भी वासना ना आए तो वो संत बालक है, सिद्ध है। और हमने अपनी वासना को दबा दिया और समाज में तो अच्छे बन गए, लेकिन सामने वाले को भी वासना आ गई, तो अभी हमारे मन में दबाने की बात है। इसका मतलब अभी जितनी शुद्धता है उतनी नहीं है। तो जब इतने शुद्ध हो जाओगे कि आपके संपर्क में आने पर भी उसमें वासना न उठे, तब जा करके आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो विचलित होकर पागलों की तरह जिंदगी बिता दोगे, कुछ होने वाला नहीं। शुद्धता, मेरे संपर्क में 58 से संन्यास लिया, 4 साल हिमालय में रहने के बाद आए, अभी तक बहुत लोग आए, कितने किताब देख के शुरू कर दिए, कितने ये देख के शुरू किए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं भी संन्यासी हूँ। रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े थे, उनकी जिंदगी में केवल एक विवेकानंद मिला जो तैयार हो गया, न वैसे के वैसे रहे। अरविंद घोष विश्व के माने हुए योगीराज, बड़ी सिद्धियां थी, सब बहुत किसियार, लेकिन ऊंची बात बता रहा, एक मदर को मिला। और मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं किसी खंडन नहीं करता, ये भ्रमण काल में देखा 7 दिन में भगवान का दर्शन होगा, लेकिन $5,000 चाहिए। मैंने कहा मैं $10,000 दूंगा। अरे जब भगवान दर्शन होगा तो 5,000 क्या 10,000 दे दो, आप जा सोचिए तो सही। एक कहानी सुना दो मेरे पर, साधुओं पर, क्योंकि सच्ची बात नहीं सुनाऊंगा मुश्किल हो जाए। एक आदमी ने, राजा ने, पुरानी बात है, ऐलान किया कि जो मुझे परमात्मा का दर्शन करा देगा उसे मैं 1,00,000 अशस्वियां दूंगा। पुरानी कहानी, ये आए। राजा कहते मुझे ज्ञान नहीं हुआ। अच्छा जाओ, जाओ। एक आए, कहते राजा मेरा जैसा सिद्ध संत दुनिया में कोई नहीं, मैंने परमात्मा का दर्शन करा दिया है, लेकिन तू लालच में आ गया है, इसलिए झूठ बोल रहा है कि मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। कहते आपके गुरु कौन? बताया कि मेरे गुरु जो 3000 बरस के। अच्छा, आप अपने गुरु का नाम बताओ। उसने श्रद्धा से कहा, साधक ने, राजा ने, कि हे 3000 वर्ष के गुरु, हिमालय में रहने वाले, अगर मैं सच्चाई पर हूं तो आप आवाज दो कि मेरी बात ठीक है कि नहीं, मुझे दर्शन नहीं हुए। आपका चेला कहता है मुझे दर्शन हो गए, मैं लालची हो गया। हे 3000 वर्ष के हिमालय निवासी गुरु, आवाज दो कि मैं सही हूं तो गलत। आवाज आई, राजा तुम्हें तो परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, इस मेरे चेले को भी नहीं हुआ है, सिद्धियां हैं, इसको भी दर्शन नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा इसे परमात्मा का दर्शन होता तो 1 लाख सरफी लेने के लिए आपके पास नहीं आता। जिसे परमात्मा का दर्शन होगा वो लालची, सारा ब्रह्मांड उसका गुरुओं के दिया। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इतने दिन में पैसे में भगवान का दर्शन होगा। मैंने कहा भाई दे दो, हमारे कबीर तो कहते हैं सिर्फ देने पर दर्शन होता, दे दो पैसे की दुआते जो। अरे दर्शन हो गया तो क्या 10000, क्या लाख, ये क्या। इसलिए अब अगले संडे भी उठाऊंगा भावेश। आज एक प्राइमरी चीज बता रहा हूं, किसी से मत पूछो कि मैं अच्छा हूं, लेकिन पहले देखो किसी को देखकर लालच तो नहीं आती, देखकर मन तो नहीं बिगड़ता, मन में विकार तो नहीं आता, किसी की सुंदरता पर हम मोहित तो नहीं होते, किसी के लिए निंदा तो नहीं है। आज ये विश्लेषण करो और 1 हफ्ते के बाद फिर आगे बताऊंगा। हरि ओम।
सद्गुरु देव की।